उसके बाद अगली आयत, वस्कुर नमा युतलफी बुयूती कुन्न मिन आयातिल्लाही वल हिक्मा, याद रखो अल्लाह की आयत और हिकमत की इन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं, बेशक अल्लाह लतीफ और बाखबर है। लिखिए, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, ये औरतें दीन का काम क्यों कर रही हैं, ये औरतें क्यों पढ़ती पढ़ाती हैं, ये तो मर्दों का काम है। ये नंबर नोट कर जाइए, सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 24, ये दलील है कि औरत भी इल्म का काम करेगी। याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां थी, आगे आएंगी आयतें थोड़े से तस्करा कर दूंगी, उन शादियों का एक बहुत बड़ा मकसद उम्मत को इल्म देना था। एक मर्द घर में ज्यादा खुलता है, पर्सनल मैटर्स होते हैं, बीवी के साथ उसका मामला होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज ने आपके बाद तकरीबन नि सदी तक उम्मत को इल्म दिया। ये डायरेक्ट आयत है कि तुम्हारे घर में जो आयतें उतर रही हैं, अब तुम इसको अपने तक ना रखो बल्कि इसको दूसरों के साथ शेयर करो। जब औरत इल्म नहीं सीखती तो बच्चे भी महरूम रह जाते हैं। इसलिए आप देखिए, जब से औरतों को इस काम से अलग किया तब से यही कुछ हुआ। आप देखिए कि माँ की गोद कितनी बड़ी एक तहफ्फुज़ होती है ना, अगर औरत के सीने में ईमान हो, दिल में तकवा हो, उसकी आंखों में हया हो, इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन कोई हो नहीं सकता। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इल्म के लिए खालिस कर ले। एक से सवा मिनट का क्लिप है इमाम सुदेस साहब का, आप लोग जानते हैं इमाम काबा, उन्होंने खुतबा दिया अभी, जिसके बाद जो चीज़ मुझे समझ आई है वो ये समझ आई है कि सिर्फ हम इस वक्त मुसलमान ही नहीं बिगड़े हुए, बाकी भी बिगड़े हुए हैं। मैं आपको उसका उर्दू का एक खुलासा हल्का सा सुना देती हूँ कि आज पूरी दुनिया में औरत को किस काम के लिए लोगों ने समझ लिया और बाकी छोड़ दिया। औरतों को खाना पकाने से फुर्सत ना देने पर इमाम हरम मक्की अश्शेख अब्दुलरहमान सुदैस ने बहुत सख्त लहजे में खुतबा जुमा में तंबीह फरमाई और कहा कि औरतों पर रहम करो, जब वो जोहर से मगरिब तक तुम्हारे लिए खाने पकाने में लगी रहेंगी और मगरिब बाद रात तक किचन समेटने में लगी रहेंगी, तो वो तिलावत तालीम और दावत में कब वक्त लगाएंगी। आप देखिए कि औरत को आज हमने किन कामों में लगा दिया। सच बताऊं, औरत अगर खाना ना पकाए ना, अब आप बंद करके कान सुने, अगर औरत खाना ना पकाए ना तो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने मर्द को कहा कि औरत के नान नफके के तुम जिम्मेदार हो, और नान पकी हुई चीज होती है। आज तो अल्लाह की रहमत हो जाए बस, क्या होना है बाहर जाके घर में। लेकिन याद रखिए कि पकी हुई रोटी मर्द देने का मुकल्लफ है, अगर औरत रोटी पका के देती है तो एहसान करती है मर्द पे। औरत खाना ना पकाए तो गुनाहगार नहीं है, बट अगर औरत अपने घर में अपने बच्चों और अपने लिए दीन और इल्म का काम नहीं करती तो वो मुजरिम होगी। कल एक बुक पढ़ाई है मेरा 6 मंथ्स और इससे भी कुछ ऊपर हो गया, पाकिस्तान में पढ़ाई थी, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने में औरतों का किरदार, डॉक्टर फजल अली साहब की बुक है, बड़ी खूबसूरत किताब है, हमने उसको पढ़ा और बहुत इंजॉय किया, आप भी सुन सकते हैं। इतनी सिंपल उसमें कहानी है कि अजवाजे मुतहरात कैसे बच्चों की तरबियत करती थी, कैसे अपने शोहरों को नसीहत करती थी, कैसे उन्होंने गुनाहों की दावतों को झुटलाया। अब ये काम करने का वक्त है, अब इनको रोल मॉडल बनाएं, अपने घर में स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स रखें, नबी की बीवियों की बातें रखें। तो ताक रातों के लिए हमारे पास हमेशा ही एक ऑप्शन होती है कि हमें अज़वाजे मुतहरात की कहानियां सुनाएं। तो कुछ प्लान बन तो रहा है, बाद में आपको तो बता देंगे ये लोग कि ये जो आखिरी रातें आ रही है तो उसमें कोई 1 घंटे सवा का सेशन रखेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप चाहेंगे तो हम उसमें किसी एक दिन किसी एक सहाबिया या अज़वाजे मुतहरा की बात भी कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने रोल मॉडल्स को पहचानें, फिर वो मुख्तलिफ नाम जिसको लेना भी नहीं आता अक्सर लोगों को, उनको रोल मॉडल लोग नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर फरमाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात, बिल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, दुआ करे अल्लाह हमें बना दे, मोमिन हैं, मती फरमान हैं, रास्तबाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं, अल्लाह ने इनके लिए मगफरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। करें ज़रा सा मुहासबा, क्या मैं मुस्लिमा हूँ, क्या मैं मोमिना हूँ, क्या मैं कानिता हूँ, क्या मैं सच्ची हूँ, क्या मैं साबिरा हूँ, क्या मैं अल्लाह के आगे झुकती हूँ, क्या मैं सदका देती हूँ, क्या मैं रोज़े रखती हूँ। मैंने तो देखा है लोगों में नाम इतना कॉमन है साइमा, मतलब नहीं पता होता। आप रोज़े रखती हैं कसरत से, अब आपको नफिल रोज़े रखने चाहिए क्योंकि आप साइमा हैं, आबिदा हैं तो इबादत कीजिए, हम बोलते भी कैसे हैं ना, साजिदा और माजिदा और आबदा, हमारे अंदर वो रूह ही नहीं आती कि अल्लाह ने हमें नाम कितना प्यारा दिया है। फिर इसी तरह से क्या मैं अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हूँ, और क्या मैं अल्लाह को कसरत से याद करती हूँ। यहाँ इस पूरे पारे में आप जिक्र की कसरत देखेंगे, और मैंने जब इस पे बहुत गौर किया ना, तो मुझे इतना समझ आया कि जब शुक्रगुजारी होती है तो जुबान पे अल्लाह का जिक्र आता है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। और ना शुक्रे लोग दूसरों के कसीदे पढ़ते रहते हैं और अल्लाह का जिक्र उनकी जुबान पे भी नहीं आता। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मेरे आपके लिए ये सारी नेकियां आसान कर दे। फिर उसके बाद फरमाया, वमा कान लिल मोमिनी वला मोमिनतिन व इजा कद अल्लाहु व रसूलुहु अमरा। इसको हाईलाइट करना, एक एक लफ्ज को दिल पे लेकर सुनते हैं। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक नहीं है, शी डोंट हैव दिस राइट। आजकल वुमेन राइट्स की बात है ना, तो ये राइट नहीं है किसी के पास, ये तो औरत के पास भी नहीं है, तो मर्द के पास भी नहीं। क्या कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे, तो फिर इसे अपने इस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार है। तदब्बुर कीजिए, अल्लाह ने मेरे आपके लिए किस किस चीज का फैसला किया हुआ है। क्या मैं अल्लाह के हर फैसले पर राजी हूं? दोहराने की जरूरत तो नहीं है मुझे। एक औरत होने के नाते अल्लाह ने मेरे लिए क्या फैसला किया? पीछे सूरत नूर में क्या फैसले सुनाए, सूरत अल आराफ में क्या फैसले सुनाए, और आज सूरत अल अहजाब में क्या फैसले सुनाए जा रहे हैं? क्या मैं अपनी च्वाइस के साथ काम करती हूँ? आपको पता है कि गालिबन अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा या अमर बिन अलास का बेटा था, तो उन्होंने अपने बेटे के सामने ये हदीस पढ़ी कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में जाने से ना रोको, ला तमनो माई, अल्लाह की बंदी, क्योंकि लोग नहीं पसंद करते कुछ। तो उन्होंने कहा हम तो रोकेंगे, बस इतनी बात कही उन्होंने, मैं तो अपनी बीवी को रोकूंगा। बाप ने नाराज होके कसम खाई कि मैं तुझे हदीस सुना रहा हूं और तू उसके आगे अपनी मर्जी करता है, जा, मैं तुझसे कभी नहीं बात करूंगा। रिवायत में आता है फिर मरते दम तक नहीं बोले अपने बेटे से, क्योंकि जब अल्लाह को दे चुकी है इख्तियार। देखिए, कभी सोचिए तो सही, मैं सोचती हूँ कभी अल्लाह की निगाह से मैं खुद को देखूं तो फिर मुझे अपनी असल औकात पता चलेगी। आप अपने ही जैसे लोगों से अपनी कीमतें वसूल करते हैं, लोग कहते हैं अच्छा तो हम अपने आप को अच्छा कहते हैं। तो आज के बाद इस एक आयत पे गौर कीजिए, अभी भी करें, मेरा तो दिल कर रहा है छोड़ दूं अभी 1-2 मिनट। क्या मैंने अपने मामले में अल्लाह और उसके रसूल के फैसले कबूल किए हुए? क्या मैंने अपना औरतपन और औरत की जिम्मेदारियां देना कबूल किया हुआ? लिबास और हिजाब के मामले में अल्लाह के मामलों को कबूल किया हुआ? माँ का अपने बच्चों को दूध पिलाना इसको कबूल किया हुआ? एक बीवी का अपने शौहर के आगे बहुत ही नरम आजिज मिजाज होना कबूल किया? बल्कि यहाँ पर एक्टिविटी बनाए, लिखें, ढूंढें कुरान और सुन्नत की वो सारी चीज़ें। आपको मैं तो एक ही किताब का नाम दूँ तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप खुद ढूंढें पिछले 22 पारों में या 21 पारों में क्या क्या फैसला पड़ चुके हैं औरतों का, और फैसला क्या जिम्मेदारियां। तो अगर नहीं किया, अब तौबा करके अल्लाह से मदद मांगते हैं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो वो सरी गुमराही में पड़ गया। नाफरमान कौन है? ना शुक्र। बहुत सोच के मैंने इस बारे पे ना शुक्रेपन को बेस बनाया, क्योंकि असल में हम मुसलमान इस वक्त ना शुक्रेपन की सजा भुगत रहे। सीधी सी बात, औरतें भी तो मर्द भी, हलाल छोड़ के हराम लेना क्या? बोलिए आप, बोले मैं पूछती हूँ, ना शुक्रेपन बोले। अल्लाह ने औरत को इतनी प्यारी जिंदगी की दावत दी, उसको छोड़कर अपने मन माने तरीके और वेस्टर्न स्टाइल पे अपनी बच्चियों को जो भगा रहे हैं वो क्या है? मुझे तो बच्चियों पे रहम आता है, सच बताएं, माइंड ना कीजिएगा, आपकी तो मुझे पता ही नहीं किसकी है नहीं, लेकिन आज के दौर में जो बच्चियों को पालने का वही दौर जिसमें मर्द लगे हुए थे, बेटे लगे हुए थे, वो आज बेटियां लगी हुई हैं। पहले बेटे के लिए लोग कहते थे ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, इसकी तो कारोबार लग जाए, इसकी जॉब लग जाए, फिर इसकी शादी करो। आज सेम यही फिक्र बेटी के लिए, आज सेम सोच देकर बेटी को पालते हैं कि नहीं, अगर मियाँ मर गया तो क्या होगा, तलाक देगा, कुछ क्या होगा, अपने ऊपर रखे। आप तो ना शुक्रबन का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है जो बच्चियां इस माहौल से हटकर, जिन्होंने जिंदगी को वाकई उस तरह एंजॉय किया, उन्होंने दीन सीखा, उन्होंने दीन को खिदमात की, वो आगे निकली। क्या वो भूखी मर रही हैं? क्या आप और मैं और हमारी नानियां और दादियां सारी भूखी मर गई और सबके शौहर मर जाते हैं फौरन? यानी मुझे एक बच्ची ने खुद कहा, मैंने कहा आप क्यों पढ़ रही हैं? कहती बिकॉज मुझे अपना कैरियर बनाना है। मैंने कहा तुम्हें ये पसंद है? कहती मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने कहा कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी रोज जाती है, खुशी होती? कहती नहीं होती। मैंने कहा फिर जाती क्यों हो? कह रही बस जस्ट आई नीड टू मेक माई कैरियर। मैंने कहा कैरियर क्यों बनाना है? कहती आई विल अर्न, मैं कमाऊंगी। तो मैंने कहा तुम्हारे अब्बू तुम्हें पैसे नहीं देते? कहती देते हैं। मैंने कहा शादी के बाद तुम्हारा हस्बैंड देगा? कहती व्हाट हैपन इफ ही विल डाई? एक बच्ची 15, 16, 14 साल की थी, मेरे मुंह ने ये बात सामने की कि अभी 14 साल की बच्ची का माइंडसेट क्या सोसाइटी ने बना दिया कि तुम इसलिए पढ़ो कमाओ और कुछ बनो क्योंकि शौहर मर गया तो फिर तुम्हें भी तो कुछ रोटी खानी है ना। क्या ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं? वल्ला ही हम बेटियों को बेटा बना के पाल रहे, ये भी ना शुक्रापन है। ये पूरी सूरत आपको औरतों ही के गिर्द घुमा रही है। दुआ कीजिए कि हम अपनी बेटियों को वैसे पालें कि वो कल अच्छी बीवियां फिर बने। देखिए एक औरत उतना ही पढ़ जाती है जितना एक मर्द पढ़ता है, तो कल क्या वो फिर उसकी बात मानेगी? ये वजह आज घर टूटने की बहुत बड़ी, मर्द के मुकाबले में एक मर्द ही तैयार कर रहे हैं हम, सिर्फ एक जरा सा उससे ढीला डाला है या नाजुक है। अंदर से माइंडसेट बिल्कुल वही, वही काम वो करता वही ये करती। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं कि ना पढ़े, वल्लाही मुझे आज, मैं हर साल कहती हूँ अपने वहां साथियों को मुझे 1 साल फ्री दे दो, 2 साल फ्री दे दो, मैं अभी कुछ और पढ़ना चाहती हूँ। कभी कोई मुझे मेडिकल की स्टूडेंट मिल जाए, मैं कहती हूँ मुझे दाखिला मिल सकता है? मुझे आज भी इतना प्यार है साइंस से, मुझे आज भी मेडिकल प्रोफेशन से प्यार है, यदि दिल करता है पढ़ने को, पर ये ईमान नहीं है कि डॉक्टर इसलिए बनूं कि फिर रोटी तो कमा लूं ना। आउज़ु बिल्ला। दुआ कीजिए कि हमारी सोच सीधी हो जाए। अल्लाह ने हमें इतना प्यारा प्लानर दिया, इतना प्यारा लाइफ सेट दिया, हम उसको छोड़कर धक्के खा रहे हैं, इसी से हमारे सारे मसले चल रहे हैं। अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। फिर नबी सल्लम की जिंदगी का एक खास वाक्य है जिसका यहाँ तस्करा है, शुरू सूरत में भी हुआ था, आइए इसको देखते हैं। वइस्तकूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैह, ए नबी याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था। जैद, पहले तो उनके बारे में ये ऑनर देखिए, अल्लाह ने उस शख्स पर एहसान किया था, ये उनकी तारीफ हुई है। इनाम वाले लोगों में हजरत जैद भी हैं। क्या इनाम किया था? कि अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर। इस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था और तुम लोगों से डर रहे थे, जबकि अल्लाह इस बात का ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुके तो हमने इस मुतल्लिका औरत से आपका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे जबकि वो इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों, और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही था। नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया हो। यही अल्लाह की सुन्नत इन सब अंबिया के मामले में रही जो पहले से गुजर चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म एक कतई तयशुदा फैसला होता है। ये अल्लाह की सुन्नत इन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं और इसी से डरते हैं और एक रब के सिवा किसी से नहीं डरते, और मुहासबे के लिए तो बस अल्लाह ही काफी है। लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमुन्नबीजीन हैं, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। ये सब आयात नबी सल्लम की जिंदगी के एक खास वाकये की तरफ इशारा करती हैं। हुआ क्या कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो अपने दौर की बड़ी मालदार औरत थी, उनके साथ जब नबी सल्लम की शादी हुई तो तोहफे में उन्होंने अपना एक गुलाम जिनका नाम जैद था वो अल्लाह के नबी को पेश किया। उस दौर में ये ऐसे ही होता था जैसे आज आप किसी को कोई मशीन पेश कर देते हैं। अब अल्लाह के नबी ने उनको गुलाम कहने की बजाय बेटा कहा, लोग उनको जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। बहुत अच्छा मामला हुआ। एक ऐसा भी दौर आया कि उनके माँ बाप उनको लेने आए तो वो वापस जाने से इनकार करते हैं कि नहीं, मैं अल्लाह के नबी को छोड़कर नहीं जाता। और असल में यही एक बंदे का किरदार होता है कि जब उससे वास्ता पड़े तो कोई उससे अलग ना होना चाहे। अब क्या हुआ कि जब जैद जवान हुए अल्लाह ही के नबी के घर में, तो आपने अपनी फूफीजाद बहन जैनब के साथ उनका निकाह पेश किया, रिश्ता पेश किया। जैनब कुरैशी थी, खूबसूरत थी, और अरब में खसब नसब की बड़ी बात होती थी। उनका दिल खुश नहीं था इस पे, लेकिन ये ऊपर वाली आयत पे उन्होंने अमल किया कि जब अल्लाह और उसका रसूल एक बात कह रहा है तो मैं क्यों ना कहूँ, शादी हो गई। लेकिन दिल से वो गांठ नहीं खुल रही थी कि मेरा शोहर गुलाम क्यों है। ये ऐसी है कि आज के दौर में समझने के लिए कि किसी की शादी ड्राइवर के बेटे से हो जाए या माली बाबा के बेटे से हो जाए, वो कितना ही अच्छा क्यों ना, लेकिन बात जब जहन कबूल नहीं करते, नहीं बन रही थी। दोनों नेक थे, दोनों अच्छे थे, ये भी याद रखे। घर टूटते हैं तो जरूरी नहीं दोनों बुरे हों, दोनों नेक भी होते हैं। नहीं बनती, नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव चला, नहीं नेगेटिव नेगेटिव साथ चला। बहरहाल अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को बता दिया वही के जरिए कि जैद इनको तलाक देंगे और फिर उसके बाद आपको जैनब से निकाह करना पड़ेगा। आम हालात में तो फूफीजाद बहन थी, कजन थी, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम क्या था कि अरब लोग मुंह बोले बेटे की बीवी या मुतल्लिका या बेवा से निकाह को हराम समझते थे। वो इसको एक सगे बेटे की तरफ बात थी, तो इन आयात में अल्लाह ने ये रखा। अल्लाह के नबी के लिए ये कितना बड़ा प्रेशर था, आप सोचिए। आज के दौर में कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात सुने कि ससुर ने बहू से या बेटे ने तलाक दी और उसी बच्ची से फिर एक ससुर ने शादी कर ली तो कितना मायूब होगा। अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे कि इस इम्तिहान में पड़े, लेकिन अल्लाह ने डाला। اتنی قربانیاں دیں. تو ان آیات سے یہ سیکھا آپ نے میں نے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ اس کو بھی نہیں لاتے. دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کرنا آسان ہے پر معاشرے میں پھیلی ہوئی رسموں کو توڑنا مشکل ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عبادات کے طریقے سکھائے اسی طرح سے بیکار رسموں کو بھی ختم کروا دیا. پھر اسے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چھپانا ہوتا تو یہ آیتیں چھپا لیتے. کوئی پسند کرتا ہے یہ بات جو اس کے اندر کی باتیں کھولے کہ تم تو دل سے خوش نہیں ہو, دل سے پسند نہیں کرتے. پھر اگلی بات ان آیتوں میں ہے خاتم النبیین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, یہ میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن آپ نے اپنی زندگی میں بتا دیا, روایت ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے, یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. علماء کہتے ہیں کہ آج کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ تو کافر ہے, کسی نے اسے یہ کہہ دیا کہ بتاؤ پھر اس نبوت کا کوئی ثبوت دے, اسے ثبوت مانگ لیا, وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو یاد رکھیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اس کے بعد کوئی چیز پیچھے نہیں آتی. لیکن آپ کے بعد مسلمہ کذاب اور اسی طرح سے اسود انسی, حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا. آپ کے میرے لیے یہ خواہش ہونی چاہیے اس میں کہ ہم اپنے نبی کی نبوت پہ راضی ہو جائیں, کہیں ہمیں ان کے بعد اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ کو ایک چھوٹا سا اشارہ دے دوں کہ آج کے دور میں ہماری نسلوں پہ جو بہت سارے وار ہو رہے ہیں اس میں جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے دین کو خوبصورت کر کے پیش کرنا بھی ہے. آج آپ کو بہت سارے جو ادھر ادھر دین کے نام پہ لوگ گھومتے پھرتے دکھتے ہیں ان میں کئی لوگ اسی سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں جو آپ کے میرے لیے چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا ہی کے ایک شخص لدھیانہ سے ایک شخص اٹھے تھے اور ان کے نام پہ ایک پورا دین آج چلا ہوا ہے. تو بس سیدھی سی بات ہے, اپنے بچوں کو پیور علم دیں, قرآن سنت کا دیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت دیں اور ان کو صحیح دکھا دیں, پھر کمپیریٹیو ریلیجن کے نام پہ جو کچھ پڑھے جو کچھ سنیں. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ جب ایک عام گھر کی مسلمان بچی کی شادی کسی ایسے سے ہوتی ہے کہ جس کو آج تک کسی نے مسلمان نہیں مانا مسلمانوں میں, لیکن وہ چونکہ ساتھ پڑھنے میں آپس میں محبت ہوئی, یہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بس ہمیں ان سارے فتنوں سے بچا لے. پھر اس کے بعد اب تھوڑی سی ذکر کی باتیں ہیں. فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو, کہیں اللہ کو کسی بھی طرح سے یاد کیجئے, سبحان اللہ کہہ کر, الحمدللہ کہہ کر. کیونکہ آپ دیکھیے جب کسی کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو اس کی محبت آتی ہے. ہمارے یہاں ذکر کو بھی آج کے دور میں اللہ اکبر پتہ نہیں کیا دم درود بنا دیا. ہم نے ورد اور ذکر کا فرق مٹا دیا ہے. دیکھیے ذکر ہے یاد, ریممبرنس, اللہ کو دل میں یاد رکھیں گے تو دل کا ذکر, زبان پہ سبحان اللہ الحمدللہ آ گیا تو یہ آپ کے میرے لیے دنیا زبان کا ذکر ہے. اسی طرح سے آپ کوئی گناہ کا کام کرنے لگے, یاد آ گیا او اللہ ناراض ہوگا, تو یہ آپ کے عمل کا ذکر ہے. تو ذکر الہی وقت کا بہترین استعمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے ابو درداء سے, کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے, جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تمہارے لیے دشمن سے لڑنے سے بہتر ہے. دیکھیں کتنی مشکل مشکل نیکیوں کا ذکر ہے. تم ان کی گردنیں مارو وہ تمہاری گردنیں مارے, اس سے بھی بہتر ہے. تو صحابہ نے کہا آپ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا, اور آپ نے فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. ارماز کہتے کہ ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے. تو اپنی زبانوں کو ذکر سے تر کریں. ایک منٹ میں آپ دیکھیں, اس پہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا بھیجیں گے کہ ایک منٹ میں سبحان اللہ کتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. آپ حیران ہوں گے کہ ہم منٹ نہیں, ہم تو گھنٹے ضائع کرتے ہیں. تو زبان پہ ذکر ہوگا انشاءاللہ, ایک تو اللہ کی رحمت آئے گی, فذکرونی اذکرکم, دوسری بات یہ ہے کہ غیبت نہیں ہوگی, کسی کو تانا نہیں دیں گے, الزام نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ایک منٹ میں آپ 50 سے زائد بار کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی تو ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے سے سب سے کم جو فائدہ ہوتا ہے, دل سے غم دور ہو جاتا ہے. آج غمگین بیٹھے ہیں, دکھی ہیں, پریشان ہیں, پڑھ ہی نہیں رہے. تو کیا 30 سے زائد بار آپ ایک منٹ میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نارمل سپیڈ سے پڑھیں. اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل, 31 से 33 बार आप पढ़ सकते हैं, और ये वो कलम है जो हजरत इब्राहिम ने आग में डाले जाने के वक्त पढ़ा था और उनके लिए आग गुलो गुलजार बन गई। ये बुखारी की रिवायत है। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, 1 मिनट में आप 20 से 22 बार पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में अल्लाह के नबी की रिवायत क्या है तिर्मिजी की, कि जब आपके ऊपर कोई मामला मुश्किल हो जाता तो आप उस वक्त ये कलमा पढ़ते, अल्लाह के हुक्म से आसानियाँ हो जाती। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, और ये तो मैं आप सबको कहूंगी कि जुबानी याद होना चाहिए, 20 से 21 बार ये जुमला पढ़ा जाता है 1 मिनट में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अस्मा बिनत उमैस थी, बड़े कर्ब में थी, तकलीफ में थी, आपने उनको कहा ये कलमात पढ़ो। अबू दाऊद की रिवायत है, और मैंने एक अपने हमारे उस्ताद हैं उनसे बातचीत सुनी, उन्होंने कहा किसी मुश्किल में पढ़ो, किसी मुश्किल में, कोई इम्तिहान देने जाना है, खौफ है, कहीं इंटरव्यू है, का मिसाल है कि कहीं इमिग्रेशन का कोई प्रॉब्लम है, कहीं पुलिस का डर है, कहीं कोई रोकने का डर है, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह आपके दिल को जमा देगा। जब दिल कांप रहे होते हैं ना, हौलते हैं, कई दफा छोटी छोटी चीजों पे दिल डरते हैं, अल्लाह के हुक्म से ये कलेमात पढ़ें तो जिक्र बहुत बड़ी दौलत है। इसी तरह देखिए, सुबहान अल्लाह ही वबिहमदिही सुबहान अल्लाह अलअज़ीम, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कलिमतानी खफीफतानी अलल्लिसानी व सकीलतानी फिल मीज़ानी व हबीबतानी लिर्रहमानी, दो कलमे जुबान पे हल्के, नामे अमाल में भारी और रहमान को बड़े प्यारे हैं। 25 से 30 बार आप पढ़ सकते हैं, और ये मुस्लिम की रिवायत है जिससे पता चलता है कि हमारा आज के टाइम का बेस्ट यूज़ क्या है, कसरत से जिक्र करें, और अगर आप उसमें दुरूद शरीफ करें पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, 18 से 20 बार आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कसरत से दुरूद का पढ़ना हर दुख गम से निजात और बख्शिश का जरिया है, तिर्मिजी की रिवायत है। तो करेंगे आज से कोशिश, यानी आज से लेकर कल तक आपने शौरी तौर पर, जब कुछ और नहीं मुंह से करें, मुंह से खाना पकाते हुए काम हाथों से कर रहे हैं, यकीन करें इतनी आदत हो जाएगी, बिस्तर पे सोए हुए करवटों में भी आप सुभान अल्लाह कह रहे होंगे। इसी तरह आप देखिए वो कलमा जो पीछे सूरत अंबिया में पढ़ चुके हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, ए अल्लाह मैं जालिम हूँ, तू पाक है और मेरे पे रहम कर दे, बीच लफ्ज़ नहीं है इसमें, तकरीबन 16 से 18 बार आप पढ़ सकते हैं। हजरत यूनस को मछली के पेट से निकाल दिया, हम में से कोई इतने दुखों में तो नहीं है कि सांस भी ना आ रहा हो, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे इसके पढ़ने की तौफीक दे। और एक जिक्र सुबह शाम की दुआ में, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क लहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर, 8 से 10 बार आराम से पढ़ा जाता है 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट की बात है, और अगर इसको 60 से ज़रब दे लें तो फिर देखिए, और माशाल्लाह जो हमारी स्पीड है उसमें तो हमने 8-10 वाली चीज़ 15 दफ़ा पढ़ लेनी है। तो आपने फरमाया कि जो शख्स 10 मरतबा ये कलेमात पढ़े, इसको हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 4 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, मुस्लिम की रिवायत है। तो फिर आज की टाइम मैनेजमेंट टिप ले ली आपने, कसरत से जिक्र करना है, उज़्कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा, और याद रखिए ये शुक्र गुजारी है कि वो कहते हैं कि हर वक्त नाम ही जो दिल पे है। किस बच्चे का नाम हर वक्त आपकी जुबान पे रहता है जिससे प्यार होता है? अल्लाह से प्यार, अल्लाह से मोहब्बत होगी इंशाल्लाह ताला उसी का जिक्र होगा। और फरमाए सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो, सुबह शाम की दुआएं कभी ना छोड़ें, आपके मेरे बचने की और निजात की सूरत ही यह है कि हम सुबह शाम की दुआएं पढ़ के घर से निकलें, वरना जितने दुनिया में फितने हैं न जाने किस किस जगह पे परेशान हुए हों। फरमा वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और इसके मलाइका तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें तारीकियों से रोशनी में निकाल लाए, वो मोमिनों पर बड़ा ही मेहरबान है। अल्लाह हमें मोमिन बना दे और तेरी मेहरबानियां हम पर भी हो जाए। जिस रोज़ वो इससे मिलेंगे इनका इस्तकबाल सलाम से होगा और इनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाइज्जत अजर फराहम कर रखा है। ए अल्लाह जिस दिन हम तुझे मिले वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। अल्लाह के नबी की दुआ में से भी ये दुआ थी कि अल्लाह जो तेरी से मुलाकात का दिन है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। आप देखिए शादी होती है ना, शोहर से मुलाकात है बीवी की, बीवी की शोहर से, सबसे ज़्यादा उस दिन का इंतज़ार होता है, सबसे ज़्यादा उसकी फिक्र होती है। अल्लाह से मुलाकात का इंतजार एक मोमिन की जिंदगी की मेराज है। सारी जिंदगी वो इस सोच के साथ जीता है कि जिस दिन मौत आएगी, या ये तो हन नफ्सुल मुतमईन इरजी इला रब्बी की राधियत मर्दिया, ये पुकार सुननी है कि चल अपने रब की तरफ इस हाल में कि वो तुमसे राजी और तुम उससे राजी। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से मुलाकात का हमें इंतजार लग जाए। فرمائے اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر ہدایت کا روشن چراغ تھے آپ اللہ اکبر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے کیا مشورہ اللہ کا اللہ کے نبی کے اسوے پہ چلو آج آپ دیکھیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو انذار سیکھتے ہیں نہ تبشیر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے شہادت کی تمنا رکھتے ہیں میری آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو اپنے اندر لائیں لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیں برائیوں سے روکیں لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ بنیں دعا کریں اللہ مجھے چراغ بنا دے اللہ لوگ میرے ذریعے سے ہدایت لیں اندھیروں میں پڑے ہوئے لوگ یقین کریں لوگ ڈپریشن کے اندھیروں میں پڑے ان کو نہیں پتا کہ یہ کتاب ان کا علاج ہے لوگ دکھوں میں پڑے ان کو نہیں پتا یہ کتاب ان کے دکھ کا علاج ہے اور یہی بات تو وہ دعا میں بھی آتی ہے نا انت جلی القرآن العظیم ربی قلبی و نور بصری و جلا حسنی و ذهاب غمی و همی اے اللہ تو ہمارے لیے یہ دعا کو قبول فرما بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی کیوں کیسے کار بھروسہ کرو اللہ پر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے کیا اس کے بعد دل میں کوئی خوف ہونا چاہیے کوئی وسوسے آنے چاہیے کوئی ہمیں شیورٹیز چاہیے اس کے بعد سب سے بڑی انشورنس اللہ کی سب سے بڑا سہارا اللہ کا تو اللہ پہ لگ جائیے اللہ آپ کو دوسروں سے بچا لے گا انشاءاللہ